दिन भर तारीख 8 जून दिन बुधवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। बिहार में टॉपर्स घोटाले के साए में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा।
नियत बहुत साफ है कि जिस तरह से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अभी पूरी तरह से दागदार हुआ है तो नए लोगों को पदस्थापित किया जाए, चेंजेस किया जाए, उसके बाद उनका इस्तीफा आ गया।
दादरी की जिस घटना में अखलाक की हत्या हुई उसके घर से मांस का नमूना लिया ही नहीं गया था। दुनिया जहान में बात स्विट्जरलैंड की, जहां जनमत संग्रह में लोगों ने मुफ्त में पैसा लेने के प्रस्ताव को नकारा
कि अगर हर आदमी बिना काम करे ही उसको 2500 फ्रैंक दे दें तो कोई भी काम नहीं करेगा, किसी की इच्छा भी नहीं होगी काम करने की, इकोनॉमी खराब हो जाएगी।
कार्यक्रम में खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार निखिल रंजन से। बोर्ड परीक्षा में टॉपरों से जुड़ी कथित गड़बड़ियों के सामने आने के बाद बीएसईबी यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन लोकेश्वर प्रसाद सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। मंगलवार को विशेष जांच दल ने बीएसईबी के चेयरमैन से पूछताछ की थी। इसके अलावा कुछ कंप्यूटरों के हार्ड डिस्क भी जब्त किए गए हैं। ये गड़बड़ियाँ विज्ञान और कला विषयों से जुड़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक जांच आयोग ने कहा है कि आज़ादी के बाद से ही इरिट्रिया में बड़े पैमाने पर मानवता के खिलाफ सुनियोजित तरीके से अपराध हो रहे हैं। आयोग का कहना है कि प्रताड़ना, बलात्कार, हत्या और जबरन गायब करने के साथ ही दास बनाने जैसी हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है। आयोग के चेयरमैन माइक स्मिथ ने कहा,
These crimes, which have been happening in Eritrea,
एरिट्रिया में 1991 से ही ये अपराध हो रहे हैं। इसे 25 साल से ज्यादा हो गए हैं और ये किसी भी स्थिति में अपराध है, लेकिन सच ये भी है कि ये सुनियोजित हैं और ये इस संदर्भ में हो रहे हैं कि सरकार अपना शासन जारी रखने के लिए अभियान चला रही है। आयोग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भेजने की सिफारिश की है। अमेरिका में हिलरी क्लिंटन ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी की दौड़ में कैलिफोर्निया राज्य में भी डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीत ली है। कैलिफोर्निया में जीत की खबर उनके उम्मीदवारी हासिल होने का दावा करने के कुछ ही घंटे बाद आई। हिलरी को कैलिफोर्निया में 65% वोट मिले हैं, हालांकि उनके प्रतिद्वंद्वी बर्नी सैंडर्स ने अब तक हार नहीं मानी है। उत्तरी सीरिया के अलेप्पो शहर में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में हवाई हमलों में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक हमला एक अस्पताल के पास हुआ। सरकारी सेना शहर पर कब्जे की कोशिश कर रही है। इराक के आतंकवाद निरोधी सेना ने कहा है कि वो फलूजा के शुहादा ज़िले की ओर बढ़ रहे हैं। सरकारी सेना इस्लामिक स्टेट के कब्जे से शहर पर नियंत्रण वापस ले रही है। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि कार्रवाई बुधवार सुबह शुरू हुई। अब से कुछ ही देर में अमरीका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के संयुक्त अधिवेशन को अब से कुछ ही देर में संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का ये भाषण इसलिए अहम है कि इसी संसद ने उन्हें वीज़ा न दिए जाने का प्रस्ताव पास किया था। नरेंद्र मोदी भारत के 5वें प्रधानमंत्री हैं जो अमरीकी संसद को संबोधित कर रहे हैं। सेंसर बोर्ड में अटकी फिल्म उड़ता पंजाब के समर्थन में बॉलीवुड के कई नामी निर्माता और निर्देशक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुंबई में हुई कॉन्फ्रेंस में महेश भट्ट, सुधीर मिश्रा, मुकेश भट्ट, इम्तियाज अली, सतीश कौशिक और फिल्म निर्माण से जुड़े कई बड़े नाम शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस में सेंसर बोर्ड के चेयरमैन पहलाज निहलानी के इस्तीफे की मांग के साथ ही उनसे माफी मांगने को भी कहा गया। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। बिहार में 12वीं के कला और विज्ञान के टॉपर बनने की कहानी के पन्ने अभी पढ़े जाने बाकी हैं कि कैसे अल्प ज्ञान के चलते वो टॉपर बन गए। आखिर ये सब कैसे हुआ, कॉलेज की भूमिका क्या थी, ये सारी कहानी तो जांच के बाद ही सामने आएगी। लेकिन इन सारे सवालों के बीच एक के बाद एक अधिकारियों के इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। पहले बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया और इसके बाद बोर्ड के सचिव ने भी इस्तीफा दे दिया। इस बीच मामले की जाँच कर रही पटना पुलिस की SIT ने पटना और वैशाली में कई जगहों पर तलाशी भी ली। राज्य में इस मामले को लेकर राजनीति गर्म है। इस मामले में आज क्या कुछ हुआ, सुनिए पटना से हमारे सहयोगी मनीष शांडिल्य लिखी रिपोर्ट में।
बिहार में टॉपर्स घोटाला सामने आने के बाद से लगातार आलोचना की जद में रह रहे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी BSEB के अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह ने आज इस्तीफा दे दिया। मामला सामने आने के बाद लालकेश्वर लगातार विपक्ष और मीडिया के निशाने पर थे। सत्तारूढ़ जदयू ने भी बीएसईबी द्वारा मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाने के कारण उनकी तीखी आलोचना की थी। बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने उनके इस्तीफे के बारे में बताया।
बिहार सरकार ने उनको आज सुबह में शोकॉज किया था कि क्यों नहीं आपको हटा दिया जाए, क्योंकि हमारे लोगों की नीयत बहुत साफ है कि जिस तरह से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अभी पूरी तरह से दागदार हुआ है तो क्या नए लोगों को प्रतिस्थापित किया जाए, चेंजेस किया जाए। उसके बाद उनका इस्तीफा आ गया, उन्होंने इस्तीफा अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो मैं समझता हूँ कि नए किसी अध्यक्ष की पदस्थापन तुरंत किया जाएगा, सभी सेक्रेटरी कमेटी सबको बदला जाएगा।
पेशे से प्रोफेसर लालकेश्वर बीएसईबी का अध्यक्ष बनने के पहले पटना कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उनकी पत्नी उषा सिन्हा जदयू नेत्री हैं और नालंदा जिला के हिलसा विधानसभा से दो बार विधायक रही हैं। मामले की जांच कर रही पटना पुलिस की एसआईटी ने आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया भी, लेकिन वे पुलिस से मिलने नहीं पहुंचे। इसके बाद पटना पुलिस ने लालकेश्वर के पटना स्थित आवास पर छापेमारी भी की। वहीं जांच के सिलसिले में आज एसआईटी ने उन चार छात्रों के घरों पर नोटिस चिपकाया जिनके नाम इस मामले में सामने आए हैं। नोटिस में उन्हें आज पुलिस से मिलकर अपनी बात रखने को कहा गया था। एसआईटी अभी इस मामले में पांच लोगों से पूछताछ कर रही है। एसआईटी की अगुवाई कर रहे पटना के सीनियर एसपी मनु महाराज ने जानकारी दी।
रिटेन किया गया है पूछताछ के लिए। पूछताछ में कुछ अहम सुराग हम लोगों को मिल रहे हैं और हम लोगों को लगता है कि कुछ समय हम लोगों को चाहिए, आने वाले समय में हम लोग इसमें जो है कुछ खुलासा कर सकते हैं।
पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कहे जा रहे बच्चा राय फरार हैं। बच्चा राय उसी विशुन राय कॉलेज के प्रिंसिपल हैं जहां के छात्रों का नाम इस घोटाले में सामने आया है। मनीष शांडिल, बीबीसी पटना।
तो बिहार में टॉपर्स घोटाले के साए में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया और साथ ही मामले में राजनीति भी गर्म है। बिहार के बाद रुख उत्तर प्रदेश का करते हैं। गोहत्या और गोमांस खाने की अफवाह पर पिछले साल सितंबर में भीड़ के हाथों मारे गए मोहम्मद अखलाक के घर से पुलिस ने कोई मांस का नमूना लिया ही नहीं था। बीबीसी से विशेष बातचीत में दादरी पुलिस ने इस बात की पुष्टि करके बताया कि अखलाक के घर या फ्रिज से गोश्त का कोई सैंपल कभी लिया नहीं गया। हाल ही में मथुरा की एक फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में कहा गया था कि दादरी से पुलिस द्वारा लिए गए मांस के सैंपल गाय या उसके वंश के हैं। एक हत्या की वजह बने बीफ के जुड़े दावों की पड़ताल करती बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य की रिपोर्ट।
नहीं, फ्रिज से नहीं लिया गया। किसने आपको बता दिया फ्रिज से लिया गया? वो वहीं पे जो ट्रांसफार्मर के पास जितने सैंपल मिले वो सारा सब कुछ उठा करके दे दिया गया सीबीओ को।
दादरी के डीएसपी अनुराग सिंह के मुताबिक अब तक मीडिया में आई वो सभी खबरें गलत हैं जिनमें ये कहा गया कि पुलिस ने मोहम्मद अखलाक के घर से गोश्त के सैंपल लिए थे। उनके मुताबिक अखलाक के घर से 100 मीटर की दूरी पर जहां अखलाक को पीटा गया था वहीं से गोश्त के सैंपल लिए थे।
हम एक्सपर्ट होते नहीं, वो वेटनरी अफसर उसको सील करते हैं, सैंपल करते हैं। वेटनरी अफसर ने एक अपनी प्राइमरी रिपोर्ट दी पहले, वो कंफर्मेटरी नहीं थी। कंफर्मेशन के लिए उन्होंने सैंपल को लैब में भेजा जो कंफर्मेटरी रिपोर्ट अब आई है। प्राइमरी में लिखा है कि गोट प्रोजेनी का है, लेकिन उन्होंने कंफर्मेशन में बताया नहीं ये काउ एंड इट्स प्रोजेनी का है, मथुरा की लैब।
यानी डीएसपी के मुताबिक एक ही सैंपल लिया गया जिसकी दो बार जाँच हुई, पर दादरी के सरकारी वेटनरी अस्पताल और मथुरा की फोरेंसिक लैब के नतीजे एकदम अलग निकले। तो जांच में इतना फर्क क्यों? मथुरा की फोरेंसिक लैब के इंचार्ज डॉक्टर एचसी सिंह के मुताबिक दादरी में जांच सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन के तहत हुई जबकि मथुरा में तकनीकी ढंग से फोरेंसिक पड़ताल की गई।
उन्होंने डॉक्टर ने अपनी ओपिनियन दे दी, मतलब वहाँ पे लैब के माध्यम से थोड़ी कहा गया। लैब तो ये मेरे ख्याल से 5-6 स्टेट की अकेली लैब है, मतलब पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, 6-7 स्टेट है जहाँ काउ स्लॉटर एक्ट नियम लागू है, मतलब गाय काटना प्रतिबंधित है, और उन स्टेट के सबसे मतलब सैंपल यहीं पे आते हैं।
दादरी के अस्पताल की जांच रिपोर्ट अखलाक की हत्या के फौरन बाद ही सामने आ गई थी, लेकिन मथुरा की रिपोर्ट 3 अक्टूबर को ही तैयार होने के बावजूद दिसंबर में भेजी गई और हाल में सामने आई। लैब के इंचार्ज डॉक्टर एचसी सिंह ने बीबीसी को बताया कि ऐसा लैब में डार्क टिकट की कमी होने की वजह से हुआ। आखिरकार हाल ही में रिपोर्ट तब सार्वजनिक हुई जब आरोपियों के वकीलों की दरख्वास्त पर अदालत ने पुलिस को इसकी कॉपी कोर्ट में जमा करने को कहा। इन्हीं वकीलों में से एक रामशरण नागर ने बताया,
16 अप्रैल को कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था और ये मंगाया जाए तब उसके मीन वाइल ये दाखिल कर दी गई। फिर हमने इसके लिए अप्लाई किया कोर्ट में, हमें नकल दी जाए, इसकी सर्टिफाइड कॉपी दी जाए, तो कोर्ट ने पहले तो दिया नहीं, लेकिन बाद में कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, तब हमको सर्टिफाइड कॉपी मिली है।
दरअसल अदालत का ये मानना था कि गोश्त की जांच रिपोर्ट का हत्या के मुकदमे से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं। पर वकीलों की जिरह के बाद अदालत ने अपना रुख बदला और कहा कि जांच रिपोर्ट की कॉपी आरोपियों के उस हक को ध्यान में रखते हुए दी जा रही है, जिसके तहत उन्हें केस से जुड़े सभी दस्तावेज देखने का अधिकार है। बचाव पक्ष के वकील यूसुफ सैफी अब भी मानते हैं कि इससे केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ये मर्डर का मामला है, हमारे हिंदुस्तान में कोई कानून ये नहीं है कि अगर कोई किसी ऐसे पशु का, ऐसे जानवर को जबाह करता है जिसको कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर रखा है, तो उसका मर्डर कर दीजिए।
उत्तर प्रदेश समेत भारत के 10 राज्यों में गाय, बछड़ा, बैल और सांड की हत्या करना अपराध है। हालांकि भैंस की हत्या की जा सकती है और उसका गोश्त खाने पर भी कोई पाबंदी नहीं, इसे भी बीफ ही कहा जाता है। भैंसों के कई स्लॉटर हाउस लाइसेंस के साथ उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। दिव्या आर्य, BBC, दिल्ली।
तो दादरी की जिस घटना में अखलाक की हत्या हुई थी, उसके घर से मांस का कोई नमूना लिया ही नहीं गया था।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं BBC हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर। अमरीकी कांग्रेस की प्रतिनिधि सभा के स्पीकर पॉल रायन के आमंत्रण पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका की संसद के साझा सत्र को संबोधित करने वाले हैं। इस पर हमारी नजर रहेगी कि वो क्या कहते हैं और किस तरह से उनका भाषण लोग सुनते हैं। लेकिन इसी अमरीका के कैलिफोर्निया के प्राइमरी चुनावों में जीत के बाद हिलरी क्लिंटन का डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनना तय हो गया है। हालांकि उनके प्रतिद्वंद्वी बर्नी सैंडर्स दौड़ से पीछे हटने से मना कर रहे हैं, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने सभी उम्मीदवारों के मतदाताओं को अपने लिए वोट देने की अपील की है। नवंबर में होने वाले चुनावों के लिए क्लिंटन और ट्रंप को अपनी पार्टी की ओर से संभावित उम्मीदवार माना जाता रहा है। BBC संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए वैभव श्रीवास्तव से।
अमरीकी राष्ट्रपति बनने की दौड़ में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से नामांकन की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन लगभग अपनी जीत पक्की कर चुकी हैं। आवश्यक मतों को जीतने के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि ये महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है।
Thanks to you, we've reached a milestone. The first time...
इस मील के पत्थर तक पहुंचने के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूं। हमारे देश के इतिहास में ये पहली बार होगा कि जब एक बड़ी पार्टी की ओर से एक महिला का नामांकन किया जाएगा। आज की जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं, ये जीत उन सभी पीढ़ियों की है जिन्होंने इस मौके के लिए संघर्ष किया और बलिदान दिया।
हिलरी क्लिंटन के शब्द। इससे पहले अन्य राज्यों में हुए प्राइमरी चुनावों में हिलरी क्लिंटन ने भारी मतों से जीत दर्ज करके अपनी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी को लगभग तय कर लिया है। हिलरी क्लिंटन के समर्थकों ने कहा कि कोई भी उम्मीदवार उनसे ज्यादा काबिल नहीं है।
मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि ये सबसे ज्यादा काबिल और होशियार राष्ट्रपति बनाने की ओर पहला कदम है और ये मेरे, मेरी माँ और मेरी बेटी के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम एक महिला राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं।
उनमें काबिलियत है, समझ है, वो काम करना बखूबी जानती हैं। किसी में भी उनसे ज्यादा दृढ़ता और साहस नहीं है और वहीं साथ साथ वो लोगों और उनकी परेशानियों के प्रति संवेदना भी रखती हैं। मुझे उन पर पूरा भरोसा है।
मैं ताउम्र हिलरी की समर्थक रही हूं और मुझे लगता है कि वो महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।
ये थे हिलरी क्लिंटन के समर्थकों के शब्द। कैलिफोर्निया में होने वाले प्राइमरी चुनावों से बर्नी सैंडर्स को काफी उम्मीदें थीं, पर वहां भी हिलरी क्लिंटन जीत हासिल करने में कामयाब रहीं। वहीं रिपब्लिकन पार्टी की ओर से संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बाकी सभी उम्मीदवारों के मतदाताओं को कहा कि वो उन्हें ही वोट दें।
To those who voted for someone else in either party, I'll work hard to earn your support.
मैं उन सभी लोगों का समर्थन पाने के लिए मेहनत करूंगा जिन्होंने किसी और को वोट दिया। सुपर डेलीगेट्स वाली धोखाधड़ी की व्यवस्था से परेशान मैं बर्नी सैंडर्स के सभी समर्थकों को अपनी ओर सादर आमंत्रित करता हूँ। डोनाल्ड ट्रम्प के शब्द। जहां एक ओर बर्नी सैंडर्स कई बार डोनाल्ड ट्रम्प को लोगों में आपसी भेदभाव बढ़ाने और भड़काऊ बयानों से चुनाव प्रचार करने पर गलत बताते आए हैं, वहीं दूसरी ओर वो दौड़ से पीछे हटने से मना कर चुके हैं। कैलिफोर्निया, साउथ डेकोटा, न्यू जर्सी और न्यू मैक्सिको में हिलरी क्लिंटन की जीत के बाद बर्नी पर चुनाव प्रचार रोकने का दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि बर्नी सैंडर्स के फैसले से हिलरी क्लिंटन के अभियान पर बुरा असर पड़ सकता है और डोनाल्ड ट्रंप से सीधे सीधे मुकाबला करने और सभी डेमोक्रेटिक मतदाताओं को इकट्ठा करने की प्रक्रिया में देर हो रही है।
तो जैसा कि आपने सुना, कैलिफोर्निया के प्राइमरी चुनावों को जीतने के साथ ही हिलरी क्लिंटन का डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनना तय हो गया है। कार्यक्रम में अब वक्त है दुनिया जहान का। दुनिया भर का सफेद या काला धन स्विट्जरलैंड पहुंचकर रंग बदल लेता है। बेंगलुरु जितनी आबादी वाले देश के हर नागरिक की औसत कमाई भारत की तुलना में 10 गुना से ज्यादा है। अर्थव्यवस्था इस हाल में है कि बिना काम किए लोगों के खाते में लाखों रुपए हर महीने डाल दें तो भी उसके खजाने पर कोई असर नहीं होगा। बावजूद इसके लोग यहाँ न तो मुफ्त में पैसा लेना चाहते हैं। इस सवाल को पूछा गया जनमत संग्रह के दौरान। हर तरफ जब खर्च घटाने की मुहिम चल रही हो तो ये देश इतनी महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में सोचने की हिम्मत कैसे जुटा रहा है? निखिल रंजन ने इस हफ्ते दुनिया जहान में यही जानने की कोशिश की है। दुनिया जहान।
कलाई पर बंधी घड़ी, बेहद गोपनीय जगह रखे विदेशी बैंक खाते का नंबर या फिर हनीमून की तस्वीरों के साथ अगर स्विट्जरलैंड का नाम जुड़ जाए तो इंसान का रुतबा बढ़ जाता है। बीते सालों में काले धन के लिए कुख्यात रहने के बावजूद आल्प्स और स्विस पठारों में बसे देश का सम्मोहन दुनिया में कम नहीं हुआ। पिछले हफ्ते स्विट्जरलैंड ने जब अपने सभी नागरिकों को बिना कुछ किए हर महीने 2,500 फ्रैंक्स यानी करीब 1,70,000 रुपए देने के मुद्दे पर रायशुमारी कराई तो लोगों की दिलचस्पी और बढ़ी। लेकिन ज्यादा हैरानी तब हुई जब इतने सुखद महसूस होने वाले प्रस्ताव को देश के 77% लोगों ने नकार दिया। क्या यहाँ के लोगों को पैसा अच्छा नहीं लगता? ज्यूरिख में रहने वाले विजय सिंह पिछले 5 दशकों से इसी देश में हैं, लेकिन उन्हें लोगों के इस फैसले से हैरानी नहीं हुई।
ऐसा है कि आदमी सोच रहे थे ज्यादातर कि अगर हर आदमी बिना काम करे उसको 2,500 फ्रैंक दे दें तो कोई भी काम नहीं करेगा, किसी की इच्छा भी नहीं होगी काम करने की, इकोनॉमी खराब हो जाएगी। क्योंकि इकोनॉमी तो इसीलिए अच्छी है कि आदमी काम करता है, उस पर टैक्सेस देता है, सब कुछ काम करता है। तो सब देखते हुए हमारे यहाँ तकरीबन 20-22% आदमियों ने इसमें हाँ कही और सब आदमियों ने उसे ना बोल दी। सिर्फ 2-3 जगह जो कि ऐसे एरिया थे जहाँ पर कि आदमी सोशल पैसे पे रहते हैं उन्होंने हाँ बोली, बट दे वर माइनर इन दी होल कंट्री।
स्विट्जरलैंड के बैंकों में दुनिया भर का पैसा है। इसका रंग भले ही बदल जाए लेकिन मध्य युग से चली आ रही गोपनीयता की शर्तों ने स्विस बैंकों पर आज भी लोगों का भरोसा कायम रखा है। यहाँ सरकार के फैसले लेने का काम संघ, राज्य और स्थानीय प्रशासन में बहुत ज्यादा बंटा हुआ है। यहाँ तक कि टैक्स कितना देना है ये भी स्थानीय स्तर पर खुद लोग तय करते हैं।
जी, टैक्स का तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग है। हिंदुस्तान में आदमी नहीं सोच सकता कि जैसे हमारी कम्युनिटी में कल मीटिंग होगी, जनरल बॉडी मीटिंग, हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितना टैक्स देना है ऐसा। क्योंकि अगर हमारी लोकल गवर्नमेंट चाहे कि टैक्स बढ़ा दे और हम बोल दें कि नहीं हमें नहीं इतना टैक्स देना, तो गवर्नमेंट को उस टैक्स से रहना पड़ेगा जो हम पहले कर चुके हैं। हमारे यहाँ 2 तरह के टैक्स हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एक कम्युनिटी का है। जो हमारी कम्युनिटी का जो ज्यादा टैक्स है वो हम बैठ के सब आदमी डिसाइड करते हैं कि कितना टैक्स है।
दक्षिण में इटली, पश्चिम में फ्रांस, पूरब में ऑस्ट्रिया के साथ ही लिश्टेनश्टाइन से घिरे स्विट्जरलैंड पर सबसे ज्यादा असर उत्तर में मौजूद जर्मनी का है, जिसने यहाँ की इंजीनियरिंग को खूब आगे बढ़ाया है। छोटी छोटी मशीनों को बनाने में अव्वल देश के गांव घरों में दुनिया भर के उद्योगों को पीछे छोड़ने का मादा है। दुनिया जब आर्थिक मंदी से करा रही थी तब भी यहाँ के लोग बेफिक्री में जी रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जानकार और जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर मनोज पंत रायशुमारी के दो दिन पहले ही स्विट्जरलैंड से भारत लौटे हैं।
देखिए दो चीजें हैं, एक तो उनका जो बैंकिंग सिस्टम है उनकी पुरानी वेल्थ है जो जल्दी खत्म होगी नहीं, जब तक इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल चलता रहेगा तो स्विट्जरलैंड की बैंकें आगे चलेंगी। बट ये लोगों को गलत फहमी है कि बैंकिंग इज देयर ओनली सोर्स ऑफ वेल्थ, उनका दूसरा सोर्स है कि वो एक इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, उनका जर्मन इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है और जैसे उनके जो घड़ियां होती हैं उनके जो पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स होते हैं ये एक्चुअली छोटे छोटे उद्योग में बनते हैं। स्विट्जरलैंड इज नॉट अ कंट्री ऑफ लार्ज इंडस्ट्री, वो छोटे छोटे उद्योग में बनते हैं, ये जनरेशन से चल रहा है। तो उनकी प्रिसिशन जो आप समझे प्रिसिशन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है वो कॉटेज से लेके बड़े इंडस्ट्री तक लिंक है। थर्ड थिंग ऑफकोर्स इज उनकी बहुत इनकम आती है टूरिज्म से।
हर वयस्क नागरिक को पैसा देने की मांग करने वालों की दलील थी कि इससे नागरिकों में समानता आएगी, गरीबी खत्म होगी और बुनियादी जरूरतों के लिए किसी का मुंह नहीं देखना होगा। प्रस्ताव तो खारिज हो गया लेकिन अभियान चलाने वाले नतीजों को उम्मीदों से बेहतर बता रहे हैं। बेसिक इनकम अभियान चलाने वाले गुट के प्रवक्ता चे वाग्नर।
Today for us it's a very successful day. We expected 15%.
आज का दिन हमारे लिए बेहद सफल रहा। हमने 15% लोगों की मंजूरी की उम्मीद की थी लेकिन 20% से ज़्यादा लोगों ने इसे समर्थन दिया। इसका मतलब ये है कि स्विस लोग बहस जारी रखने के पक्ष में हैं लेकिन वो इसे तुरंत लागू नहीं करना चाहते। मेरे ख्याल में ये भी साफ है कि स्विस स्थानीय स्तर पर प्रयोगों को जारी रखना चाहते हैं जिससे कि बेसिक इनकम के बेहतर फायदे और इसके असर के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिले। इसके बाद शायद 7 या 10 साल में अगला कदम उठाया जाए।
प्रस्ताव को खारिज कर स्विट्जरलैंड ने ग्रीस और यूरोप के दूसरे कई देशों के सामने बड़ी मिसाल रखी है जहां बेरोजगारी ज्यादा होने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था बुरे हाल में है। सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में देश हलकान हो रहे हैं और काम करने की उम्र में युवा बेकार हैं। इतना ही नहीं इसका असर उन बुजुर्गों पर भी हो रहा है जो रिटायर होना चाहते हैं। फ्रांस जैसे देशों में रिटायर होने की उम्र बढ़ाने का जबरदस्त विरोध हुआ। मनोज पंत
आप ये देखिए कि इनका ये प्रपोजल क्या था। स्विट्जरलैंड आज के दिन में इस इकोनॉमिक कंडीशन पे पहुंची हुई है कि अगर वो काम कम करें या काम करना बंद करते हैं तभी भी चलेगा, लेकिन उन्होंने चूज ये किया कि अगर हम काम कम करें या काम करना बंद करते हैं और अगर हम सब लोग पेंशन ड्रॉ करें तो काम कौन करेगा। इससे सबक लेना चाहिए यूरोप। यूरोप में फ्रांस जैसी जगहों में जहाँ पर उनका डेमोग्राफी ये है कि बुढ़े लोग ज्यादा हो गए हैं जवान लोग कम हैं, लेकिन वहाँ पर जब पिछले प्रेसिडेंट ने कोशिश की थी कि रिटायरमेंट एज बढ़ाई जाए जिससे कि लोग ज्यादा काम करें तो सब लोगों ने इसको डाउन कर दिया। लोग वहाँ पर चाहते हैं कम काम करें और रिटायरमेंट एज कम हो जाए। तो यूरोप का बहुत एग्रेसिव व्यू है ऑन जॉब्स। आई थिंक ये स्विट्जरलैंड ने उनको ये सबक सिखाया है कि देखो आपको सोचना पड़ेगा कि फ्यूचर जनरेशन का कौन देखेगा।
कहा तो ये भी गया कि स्विट्जरलैंड के लोगों ने ये प्रस्ताव इसलिए नकार दिया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे विदेशी लोगों में इस धरती पर बसने का मोह और बढ़ेगा। हालांकि अर्थव्यवस्था के जानकार इसे सही नहीं मानते। उनका कहना है कि स्विस अर्थव्यवस्था वतन से ज्यादा विदेशों के दम पर फलती फूलती है। अगर दुनिया का पैसा स्विट्जरलैंड की बैंकों में है तो यहाँ का पैसा भी दुनिया भर में फैला है। भारत में निवेश करने वाले यूरोपीय देशों के बीच भी स्विट्जरलैंड शीर्ष 3 देशों में है।
स्विट्जरलैंड की जो वेल्थ है उनकी वेल्थ जनरेट होती दुनिया में, खाली स्विट्जरलैंड में लोग इतने हैं नहीं कि इतनी वेल्थ जनरेट हो। लोग वहाँ लोग इतने कम हैं कि लोकल डिमांड से वो अपना थोड़ी जनरेट कर सकते, उनकी डिमांड जनरेट होती दुनिया में। आप एक चीज भूल रहे हैं कि ये देश एक क्वाइट देश है बट दे आर मेजर फॉरेन इन्वेस्टर्स इन इंडिया। खाली फाइनेंस की बात नहीं है, यहाँ पर पेपर में लोग खाली स्विस बैंक और पनामा लीग का सोचते हैं।
स्विट्जरलैंड में हनीमून का ख्वाब भारत भी देखता और पूरा करता है लेकिन इन सपनों में इस तरह की रायशुमारी का ऐसा नतीजा कभी नहीं दिखता। निखिल रंजन, BBC, दिल्ली।
इस दुनिया जहां कार्यक्रम को विश्व भारती में आप दोबारा सुन सकते हैं। और स्विट्जरलैंड से एक बार हम फिर से भारत लौटते हैं और भारत में चलते हैं मुंबई, जहां सेंसर बोर्ड में अटकी हुई फिल्म उड़ता पंजाब के समर्थन में बॉलीवुड के कई नामी निर्माता और निर्देशक आज उतर के आए। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कि सुधीर मिश्रा, मुकेश भट्ट, इम्तियाज अली, सतीश कौशिक, आनंद राय, अश्विनी चौबे और कई बड़े दिग्गज हस्तियां इसमें शामिल थी। सीधे कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं सुशांत मोहन को। सुशांत, आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर रखी, क्या क्या बातें कहीं और किस तरह के आरोप लगाए गए?
बल्लाल जी, देखिए, जो सबसे बड़ा आरोप लगातार सेंसर बोर्ड पर लगाते आ रहे हैं फिल्म उड़ता पंजाब के निर्माता, वो ये कि वो राजनीतिक दबाव के चलते उनकी फिल्म को सेंसर का सर्टिफिकेट यानी कि रिलीज का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। और इसके अलावा उनसे 89 कट की डिमांड की गई फिल्म के अंदर, और निर्माता अनुराग कश्यप का ये आरोप था कि अगर वो ये 89 कट फिल्म में लगा देते हैं, जो कि जरूरी नहीं है, बहुत ही गैर जरूरी कट है, अगर वो ये 89 कट फिल्म में लगा देते हैं तो फिर फिल्म की जो है वो आत्मा ही खत्म हो जाएगी। और जो सबसे बड़ी आपत्ति उन्होंने दर्ज कराई वो ये कि सेंसर बोर्ड की ओर से कहा गया है कि पंजाब राज्य का नाम का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अनुराग कश्यप और बाकी जो निर्माता निर्देशक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे वो कहते हैं कि ये वैचारिक स्वतंत्रता का हनन है।
पहलाज निहलानी का एक मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर कट लगा दिए जाए तो मैं सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार बैठा हूं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या पहलाज के इस्तीफे की मांग उठी, माफी मांगने की बात हुई?
जी, लगातार उनसे ये मांग की जा रही है, ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी IFTDA इंडियन फिल्म टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं मुकेश भट्ट, उन्होंने भी ये मांग की कि पहलाज निहलानी को इस्तीफा देना चाहिए या फिर माफी मांगनी चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत मोहन। और इस बीच सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निहलानी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चमचा होने में उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं है। ये बात उन्होंने उड़ता पंजाब को लेकर हो रहे विवाद के बीच एक निजी टीवी चैनल NDTV के साथ बातचीत में कही। और इस ट्यून को सुनते ही आप समझ गए होंगे कि अब वक्त है खेल समाचारों का। रजत चांदना मौजूद है। रजत, क्या है आज?
जी, महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम आज सुबह जिम्बाब्वे दौरे के लिए रवाना हो गई। भारत को जिम्बाब्वे के खिलाफ 11 से 22 जून तक 3 वनडे और 2 T20 मैच खेलने हैं। धोनी कप्तानी में सीरीज के लिए टीम में कई युवा खिलाड़ी शामिल किए गए हैं और पूर्व भारतीय खिलाड़ी मदन लाल का मानना है कि सीरीज में क्लीन स्वीप से जीत दर्ज करनी चाहिए भारतीय टीम को।
जिम्बाब्वे का दौरा जो है यंगस्टर के लिए काफी अच्छा दौरा है, क्योंकि मैं नहीं समझता भारतीय टीम को कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए वहां जीतने के लिए, क्योंकि जितने भी हमारे युवा खिलाड़ी इनको एक मौका मिलेगा और हमारी एक टीम बिल्ड करने का एक यही एक तरीका होता है कि जब आप नए युवा खिलाड़ियों को चांसेस देते हैं, और धोनी एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और उनके अंदर खेलना भी उनके लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि इंडियन टीम के युवा खिलाड़ियों का सौभाग्य है कि वो उनके साथ खेल रहे हैं। सब खिलाड़ी जो है एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है, तो मेरे विचार में ये एक उनके लिए अच्छा मौका है हमारे यंगस्टर के लिए कि वो एक अच्छा प्रदर्शन करे, और जो सीरीज है बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इनको व्हाइट वॉश कर देना चाहिए।
और बात करें वेस्टइंडीज में जारी त्रिकोणीय श्रृंखला की, जी हां, तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा के शानदार गेंदबाजी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने त्रिकोणीय श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया को 47 रनों से मात दे दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीकी टीम ने 50 ओवर में केवल 189 रन ही बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम अफ्रीकी गेंदबाजों से आगे अपने आप को खड़ा नहीं कर पाई और 32.2 ओवर में ही उनकी टीम आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया केवल 142 रन ही बना सकी। दक्षिण अफ्रीका के रमाडा ने 7 ओवर में केवल 13 रन देकर 3 विकेट लिए। अभी मेजबान वेस्टइंडीज समेत ट्राई सीरीज की अन्य दोनों टीमें ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका तीनों एक एक मैच जीत चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के पास 5-5 अंक हैं और वेस्टइंडीज के पास फिलहाल 4 अंक हैं। वहीं बैडमिंटन में साइना नेहवाल ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर सीरीज के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं, जबकि PV सिंधु पहले दौर में हार कर बाहर हो गई। साइना ने पहले दौर में ऑस्ट्रेलिया की जाई लेट को 21-10, 21-14 से हराया, लेकिन PV सिंधु अपना मुकाबला हार गई।
बहुत बहुत शुक्रिया रजत चाइना। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में साइना जीती लेकिन सिंधु बाहर हो गई। अब कार्यक्रम में आपको एक बार फिर से मुख्य खबरें सुनाते हैं।
BBC समाचार। बोर्ड परीक्षा में टॉपरों से जुड़ी कथित गड़बड़ियों के सामने आने के बाद BSEB यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन लोकेश्वर प्रसाद सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। संयुक्त राष्ट्र की एक जांच आयोग ने कहा है कि आज़ादी के बाद से ही एरिट्रिया में बड़े पैमाने पर मानवता के खिलाफ सुनियोजित तरीके से अपराध हो रहे हैं। अमेरिका में हिलरी क्लिंटन ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में कैलिफोर्निया राज्य में भी डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीत ली है। उत्तरी सीरिया के अलेप्पो शहर में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में हवाई हमलों में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है और अमेरिका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के संयुक्त अधिवेशन को अब से कुछ ही देर में संबोधित करेंगे। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। अगला कार्यक्रम यानी कि घटना चक्र लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।